ओम शांति। आज सारे विश्व में अगर हम देखें तो आज हर मनुष्य के मन में हलचल है या नहीं है? हर मनुष्य के मन में हलचल है। मन तो हलचल में है किंतु बुद्धि भी हलचल में है। आत्मा के दो सूक्ष्म शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मन और बुद्धि ना। तो मन तो हलचल में है ही, क्योंकि बहुत सारी बातें मन में भरी हुई हैं, तो वो तो है ही। कि तो बुद्धि भी हलचल में है। किस बुद्धि क्यों हलचल में है? क्योंकि बुद्धि जो पुराने संस्कार स्वभाव है ना हमारे, वो बुद्धि को भटकाते रहते हैं। बाबा ने कहा हुआ है, स्पेशली ब्राह्मणों के लिए कहा हुआ है, कि ब्राह्मणों की स्थिति कौन चीज कौन नहीं बनने देते? भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने संस्कार विशेष। ये तीन चीजें इंसान ब्राह्मणों को अचल अडोल अवस्था का अनुभव नहीं करने देती है, हलचल में लाती रहती है ना। तो हम देखेंगे तो हमारा इवन आप ब्राह्मणों को भी देखें, अगर हम ब्राह्मण भी अभी तक एक रस स्थिति में पहुंचे हैं क्या? आप में से कितने हैं जो अचल अडोल स्थिति में आ गए? कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ हो जाए, ऐसा कोई है आप में से जो एकदम अचल अडोल हो बिल्कुल? चाहे शरीर के अंदर कर्म भोग आए, चाहे घर में कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई अचानक पैसा खत्म हो जाए, मकान टूट जाए, भूकंप आ जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति है कि जरा भी मन में संकल्प ना उठे, हम उस ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर में समाए रहे, शांति के सागर में समाए रहे, उस सत्य प्रेम के सागर में समाए रहे, ऐसी स्थिति है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, आज सभी तरफ हलचल ही हलचल है। मनुष्य हलचल में है, हर घर में हलचल है, समाज में हलचल है, परिवार में तो हलचल है ही है, आपका जो टाउन है, जहां भी गांव में भी बहुत तरह की हलचल है, कस्बे में हलचल है, शहर में हलचल है, प्रदेश में हलचल है, देश में हलचल है ना, और हर देश में हलचल है, सारे विश्व में हलचल। जो समाचार अगर बाई चांस आप खोलने के बैठ जाओ तो आपको कोई भी समाचार शांति का मिलेगा क्या? शांति प्रेम का समाचार कोई मिलता है क्या? कोई भी शांति प्रेम का समाचार नहीं। चारों तरफ हलचल ही हलचल है ना, सब परेशान है। और इवन देखें तो, अगर वैसे देखें तो जो चार सत्ताएं बाबा कहते हैं, राजसत्ता हिल रही है कि नहीं हिल रही? सबकी राजसत्ता हिल रही है ना। जितने भी राजनीति जो करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब हिल रहे हैं ना। कोई भी अचल अडोल अवस्था में नहीं है कि राजा खुशी, राजा सुखी है, ऐसा है क्या? राजा सुखी है? प्रधानमंत्री सुखी है? राष्ट्रपति सुखी है क्या? कोई भी सुखी नहीं है ना। धर्म सत्ता वाले जगत गुरु, वो भी हलचल में, और विज्ञान सत्ता वाले, वो भी उनके सिस्टम फेल होते जा रहे हैं दिन-प्रतिदिन ना। और इस साल तो गजब ही हो गया है ना, इस साल तो प्रकृति की हलचल कितने जबरदस्त है ना, जो कभी नहीं हुआ। यूरोप में टेम्परेचर 30 से ऊपर वो टॉलरेट नहीं कर सकते, इस बार तो 40-42 तक पहुंच गया है ना। इस बार तो बहुत बुरी हालत हुई। तो इस बार तो पूरा यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर देश में देखो क्या हालत है। जहां कभी पानी बाढ़ आता ही नहीं था, वहां पे बाढ़ आ गई है ना। तो प्रकृति के पांचों तत्व भी खूब जोर से हलचल कर रहे हैं। जो बाबा ने कहा था अंत में, प्रकृति के पांच, अभी तो शुरू में तो जैसे कभी भूकंप आ गया, कभी थोड़ा सा भूकंप आ गया, कभी थोड़ा साइक्लोन आ गया, कभी थोड़ी कहीं आग लग गई, अभी तो दिखाई दे रहा है चारों तरफ जैसे पांचों तत्व भी बहुत क्रोधित हैं, नहीं लगता? कैसे लोगों को बहा के ले जा रहे हैं। तो बाबा ने एक मुरली, शायद आपको याद हो, बाबा ने कहा था कि अंत में पांचों विकार, मतलब बाबा ने चार प्रकार की आग बताई थी, याद है? एक मुरली थी बाबा की, तो पांच अव्यक्त मुरली थी तो पांच चार प्रकार की आग होगी चारों तरफ, एक तो पांच विकारों की आग चारों तरफ होगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही है। दूसरी जो बाबा ने कहा था प्रकृति के पांचों तत्व विनाश की आग, एकदम पांचों तत्व इकट्ठे आएंगे और विनाश की आग बहुत तेज होगी। और तीसरी बात याद है आपको क्या था, बाबा ने कहा था दे अभिमान और संबंध संपर्क और पदार्थों के ममता की आग, देश संबंध एक तो दे अभिमान, मैं ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूं, राइट, रोल कॉन्शियसनेस, और साथ में जो संबंध संपर्क है माता पिता पति पत्नी बच्चे भाई बहन जो भी हैं हमारे संबंधी हैं संपर्क वाले हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और प्लस जो आपने कमाया है मकान बनाया पैसे इकट्ठे किए चीजें इकट्ठी की उसके ममता की आग है ना, वो भी एक आग के रूप में आएगी। और चौथी जो आग स्पेशली ब्राह्मणों में लगेगी वो कौन सी आग होगी, पश्चाताप की आग। ये चार आग बहुत जबरदस्त तरह से सामने आएंगी और इसमें से अगर किसी ब्राह्मण के अंदर इनमें से कोई आग का अंश अंदर रहा होगा तो जब ये आग चारों प्रकार की आग चारों तरफ से आएगी हर आत्मा को उसका सेक लगेगा। और अगर किसी ब्राह्मण में हम में से किसी में इन चारों प्रकार की आग में से कोई भी प्रकार का अंश आग का अंश हमारे अंदर होगा तो जैसे आग आपको पकड़ लेती है ना, आग तुरंत आपको पकड़ लेती है तो आग उस आपको पकड़ लेगी। मेरे अंदर मान लीजिए थोड़ा सा भी किसी के प्रति काम विकार तो नहीं है, किसी भी देहधारी के प्रति थोड़ा सा लगाव है, किसी के प्रति बहुत अच्छा लगता है उसको फोन करना या उसको व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग करना व्हाट्सएप पे, या वो रोज मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं या उसको हम बर्थडे विश करते हैं, झुकाव है उसकी तरफ, अच्छा लगता है उसको देख करके, या कुछ प्रभाव किसी भी बड़े के भी प्रभाव में अगर आप आ गए, बड़ा माना यज्ञ का बड़ा है कोई प्रभावशाली व्यक्ति है दुनिया में प्रभावशाली व्यक्ति है और आप उसके प्रभाव में आ जाते हो तो भी, और अगर टकराव किसी देहधारी से पूरे विश्व में किसी से भी 800 करोड़ आत्माओं में किसी से भी अगर आपका थोड़ा टकराव भी है ना, भले आप उसको जानते नहीं हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई आतंकवादी भी हो ना, उसके प्रति भी आपकी बुद्धि में टकराव नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो आतंकवादी उसका भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट उसका, उसके बगैर दुनिया का काम कंप्लीट होगा क्या, आतंकवादी के बगैर नहीं हो सकता, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, वो भी शोले फिल्म थी ना उसमें गब्बर सिंह के बगैर शोले फिल्म है क्या, आपको मुझे गब्बर सिंह पसंद नहीं है ना तो फिल्म है क्या वो, तो उसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और उसको उसको मैं टकराव पैदा कर नहीं टकराव नहीं क्योंकि हम क्रिएटर माना प्रोड्यूसर राइट और डायरेक्टर, उसके जैसे भगवान क्रिएटर डायरेक्टर है तो हम भी तो मास्टर क्रिएटर मास्टर डायरेक्टर हैं इस ड्रामा के, तो हम कैसे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरा किसी के प्रति सूक्ष्म भी लगाव झुकाव प्रभाव टकराव है, किसी बात में भी क्या क्यों कैसे है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे तो नहीं होना चाहिए, सेंटर में या यज्ञ में मधुबन में पांडव भवन में या ज्ञान सरोवर में किसी भी जगह पर दुनिया में समाज में क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, तो भी ये जो आग है ना कितना थोड़ा भी आवेश बुद्धि में आवेश है मन में किसी के प्रति भी किसी के प्रति लगाव जो ये जो बताया ये जो है थोड़ा भी किसी विकार का अंश है थोड़ा सा भी, कोई इच्छा है मान लीजिए आपकी कुछ खाने की इच्छा है मान लीजिए कुछ पहनने की इच्छा है, चलो अब हम दुबई तो घूम के आ जाए कम से कम ये भी इच्छा है ना, चलो लंदन तो नहीं गए दुबई तो घूम आए है ना, हम वो तो एक बार वो तो देख आए सोमनाथ तो देख आए या कुछ मंदिर ऐसा कुछ चीज हो जो आपने इच्छा हो आपकी देख आए, तो थोड़ी भी कहीं इच्छा थोड़ा भी अगर आपको विशेषता का अपने गुण का भी अभिमान है तो ये भी आग है। ये भी पकड़ लेंगे। कितना भी पुरुषार्थ किया होगा फेल हो जाएंगे। थोड़ा भी किसी भी प्रकृति के पांचों तत्व में से किसी के प्रति थोड़ी सी आकर्षण होगी, थोड़ी सी, तो भी फेल। थोड़ा सा देहाभिमान, थोड़ा सा भी रोल कॉन्शियसनेस होगी, है ना, मेल फीमेल का भान होगा, मैं सुंदर हूं या मैं ऐसा हूं या मैं कमजोर हूं, ऐसा भी नहीं है ना, मेरे अंदर गुण विशेष है या मैं इस सेवा का इंचार्ज हूं, मैं इसका निमित्त करके भी लोग अहंकार में आ जाते हैं, मैं नहीं करूं तो कमे से पूछ के क्यों नहीं किया, ये भी अहंकार आ जाता है ना। चलिए दो मिनट बाबा की ओम शांति। तो हम बात कर रहे चार प्रकार की आग की बात कर रहे थे, ये पांच विकारों की जो आग है इससे बचने का साधन क्या है, जब हमने भी बात की ना। अच्छा, पांच विकार हमारे अंदर अभी इस रूप में नहीं है, तो पांच काम विकार हमारे अंदर काम विकार के रूप में नहीं है अभी, पर मेजोरिटी ब्राह्मणों के अंदर स्थूल काम विकार नहीं है, किंतु कामनाओं के रूप में है, आवेग के रूप में एक्साइट हो जाते हैं, थोड़ी बात में एक्साइटमेंट आ जाती है, वो भी विकार का अंश है। क्रोध के रूप में नहीं है, आवेश के रूप में है, माथा गर्म हो जाता है, कोई बात हमारे हिसाब से नहीं तो माथा गर्म हो जाता है। लोभ नहीं है, लोभ के रूप में नहीं है, पैसे का लोभ, चीजों का लोभ नहीं रहा, किंतु आसक्ति है, आसक्ति के रूप में, इच्छाओं के रूप में है, राइट, चलो ऐसा, चलो ये खा लें, ये चीज मिल जाए, थोड़ा हमें भी पूछ लिया जाए, नाम मान शान थोड़ा हमें भी मिल जाए, बोलते नहीं है मुख से, कि तो अंदर इच्छा रहती है, राइट। और मोह नहीं है, कि तो आहत हो जाते हैं, थोड़ी बात इंजर जल्दी हो जाते हैं, सेंसिटिव हो गए, इमोशनल हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी फील हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर मन में होता है कि हमने इसके लिए इतना किया है, इतना इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसको इतना सा ऐसे आई थी, ये बहन तो छोटी सी थी तब तो कुछ भी नहीं थी, अभी इसको हमने इतना ऐसे कर लिया, हमने अपने बच्चे को इतना सा था इतना बड़ा कर दिया, आज हमारे सामने बोलता है ना, हमारे सामने ऐसे करता, तो कहीं ना कहीं हम आहत बहुत जल्दी होते हैं, इंजर हो जाते हैं, सेंसिटिव हो गए, भावुक हो गए, जल्दी से आंखों में आंसू आ जाते हैं, होता है नहीं होता है? ये सूक्ष्म रूप है पांच विकारों के। और अहंकार नहीं रहा है, अहम भाव थोड़ा रहा है, अहम और बहम के रूप में अभी थोड़ा अंदर सूक्ष्म बचा हुआ है, राइट। अब इनसे बचने का साधन क्या है, चाहे स्थूल रूप हो चाहे सूक्ष्म रूप हो माया का, तो ये जो पांच विकारों की आग से बचने का साधन है, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करो, उसको इमर्ज करके व्यवहार करना, सत्यता, इसके लिए कौन सा गुण चाहिए, सत्यता का गुण चाहिए। सत्यता की परिभाषा यही है, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, अपना सत्य स्वरूप क्या है, एक तो परम धाम वाला स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप है, एक सत्युग वाला स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप है, तो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप जो वो भी पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, बाबा के साथ अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, और सत्युग में, सत्युग त्रेता में सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम, ये भी पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, उस स्वरूप को इमर्ज करो, अपने अंदर इमर्ज कर लो, 5000 साल पहले की जो फाइलें हैं उनको खोलना पड़ेगा ना? पर वो फाइल खुलेगी कब, कब खुलेगी वो फाइलें जो है, कब किसमें लॉक है, ये दो जन्म पिछले 83 और 84वां जन्म जो फाइल उसमें लॉक है, वो देहाभिमान के फोल्डर में लॉक है, कौन से फोल्डर में, कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं ना, है ना, फाइल होती ना, माता को शायद समझ में नहीं आएगा, कहां का ग्रुप है ये, जिंद के, अच्छा अच्छा, मतलब देह अभिमान होता है ना, रोल कॉन्शियसनेस, जैसे मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं पति हूं, मैं इंचार्ज हूं, मेरी बात सुननी चाहिए, ये इसे कहते रोल कॉन्शियसनेस, मेल फीमेल, इसके फोल्डर में है, क्योंकि हमने जब से इस जन्म में या पिछले जन्म में इस एक बाबा के, बाबा से मिले तब से एक जन्म मिला, इसको दिव्य ब्राह्मण जन्म कहते हैं, और एक इससे पहले, सपोज जैसे मैं 27 साल की उम्र में ज्ञान में आया, अभी 64 साल हो गए है ना, तो इस 27 से 64 साल की उम्र जो हो गई कितनी, ये दिव्य ब्राह्मण जन्म हो गया, ठीक है, एक जन्म ये हो गया दिव्य ब्राह्मण जन्म, उसके पहले 27 साल तक कौन सा था, वो 83वां जन्म था, तो इसमें देह अभिमान, रोल कॉन्शियस हो गए ना, पैदा होते रोल कॉन्शियस हो गए, मैं फला परिवार का हूं, ये हूं, फिर जैसे जैसे रोल मिलते गए, बड़े होते गए, डॉक्टर बन गए, फिर हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, ये बन गए, वो बन गए, समाज में पद मिलता गया, आगे बढ़ते गए, है ना। तो वो रोल कॉन्शियसनेस इसके फोल्डर में है क्या, क्या चीज, दो जन्मों का पाप कर्म। और जो पिछले 61 जन्मों के पाप कर्म कहां है, वो देह भान के फोल्डर में, देहभान माना, देहभान माना बॉडी कॉन्शियसनेस। अब मुझे उसका पता नहीं ना कि पिछले जन्म में क्या किया मैंने, याद है किसी को, ये दो जन्मों का तो मुझे याद है ना, पिछले जन्मों का मुझे याद नहीं। तो ये जो है दो जन्मों के पाप कर्म है ना, ये जो है इसके पहले जो था ना वो क्या था, त्रेता था, उसके पहले तक क्या था, सत्ययुग था। तो एक तो उससे पहले क्या था, परमधाम में थे। तो परमधाम की फाइलें जो हैं, जब तक हम निरंतर देही मानी स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, देही मानी स्थिति का मतलब क्या है, इस देह में रहते हुए हर कर्म करते हुए, जो बाबा ने आज मुरली सुनाई, जो बाबा ने जैसे आज की मुरली सुनाई, कल की मुरली कितनी बढ़िया थी, है ना। अगर मैं एक भाषा एक उसमें कहूं कल की मुरली का, जो सुनता ना मीठे बच्चे, ये रूहानी धंधा कर, बाकी सब धंधों में नुकसान है, एक रूहानी धंधा करो, कौन सा धंधा, बाप और वर्षे को याद करते रहो, है ना, इसमें कोई नुकसान, इसमें फायदा ही फायदा है। तो अगर चारों तरफ की हलचल में अचल अडोल रहने का साधन क्या है, निरंतर बाप और वर्षे को याद करते रहो। बाप कौन है, ऑलमाइटी, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, आठों शक्तियों का सागर है। और वर्षा क्या है बाप का, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ के उसको याद करे, परम अशरीरी आत्मा बन के देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट, अशरीरी आत्मा बन, परम धाम घर में अशरीरी बाप से, उस सागर बाप को याद करो, उस पावर हाउस बाप से जुड़ जाओ। और वर्षा क्या है, संगम का वर्षा कौन सा है, कौन सा वर्षा है, वर्षा ये सात गुणी वर्षा है। सत्ययुग का वर्षा है निरोगी काया, धन धान्य संपन्न, है ना, जो बाकी जो जीवन के सत्ययुग की विशेषताएं हैं, सर्वगुण संपन्न, वो सत्ययुग का वर्षा। इस समय का वर्षा क्या है, सत्व प्रधान, हम बाबा को याद में निरंतर रह के अपने 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म कर लें और उसी सातों गुणों के स्वरूप बन जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए, पवित्र स्वरूप बन जाए, शांत स्वरूप बन जाए, सत्य और निस्वार्थ प्रेम स्वरूप बन जाए, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप बन जाए, आनंद स्वरूप बन जाए और सर्वशक्ति स्वरूप बन जाए। ये संघ कि हम इस समय अगर हम सत्य ज्ञान माना सत्य की समझ, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, इस सत्य की समझ में उसके सागर में डूबे रहे, सत्य के सागर में समाये रहे, सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते जैसे लगन, जैसे मुझे भूलेगा क्या हमको कि मैं सतीश हूं, मेरा नाम सतीश गुप्ता है, ऐसे हर समय ये स्मृति रहे, ये स्मृति भूल जाए, चलते फिरते नहीं मैं ये नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो चमत्कार सितारा हूं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा उस परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव बाबा के संतान, परम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। और सिस्टर रूपी ड्रामा में जो कुछ भी हुआ अभी तक मेरे अपने कर्मों का फल था, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, चाहे मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, मेरे घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, कौन जिम्मेवार है इसके, मेरे खुद अपने कर्म जिम्मेवार है, गलत सोचना, गलत देखना, गलत बोलना, गलत खाना, गलत सुनना, इससे मेरे पाप कर्मों का फल मुझे मिला है, मैंने अपनी कर्मेंद्रियों कंट्रोल में रखा नहीं, अपने मन को कंट्रोल में रखा नहीं, अपने पुराने संस्कारों को यूज किया, इसलिए ब्लड प्रेशर हो गया, इसलिए डायबिटीज हो गया, इसलिए दमा हो गया, या पिछले जन्म में इस जन्म में क्या, पिछले जन्म में जो पाप कर्म उसका फल मुझे ये मिला, ऐसे माँ बाप के पास जन्म हुआ जिनको पहले से बीमारी थी, उनके जीन मेरे अंदर आ गए, राइट, वही माँ बाप क्यों मिले, कर्मों का फल, मेरे अपने कर्मों का फल, और किसी का दोष तो दे नहीं सकते। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया, जो हुआ अच्छा, क्योंकि 90% विचार कहां से आते हैं, पिछले जो हमने पिछले विचार अभी तक जो हमारे साथ साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स जो अभी तक हमें हमारे मन को और भावनाओं को चोट पहुंची है, वही अंदर बस जाती है मन में, सबकॉन्शियस में, चित्त में बस जाती है और वही बार बार उभर उभर के आती रहती है और वो फिर हमारे अंदर 90% विचार वहीं से आते रहते हैं। जैसा हमने समाज में देखा, माता पिता को देखा, भाई बहन को देखा, वहां हमने मान लीजिए दुख पाया, धोखा पाया, है ना, तो क्या होता है, अब हम माता पिता ने मुझे कुछ समझा दिया बचपन में, छोटेपन में, 3-4 साल की उम्र में, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए, अब मैं उसी नजर से दुनिया को देखता हूं। लाल चश्मा लगा लिया तो लाल दिखाई देगी, हरा लगा लिया तो हरी दिखाई, जैसा फिर मैंने बचपन से सीख लिया, अब उसी नजर से, उसी स्वभाव से मैं चलता हूं दुनिया। तो वो जो है ना, उसको फुल स्टॉप लगाना, उसी में उस फुल स्टॉप लगाने की बार बार प्रैक्टिस करना। जब भी कोई मन में पुराना विचार आए, बीती कोई बात याद आए, तुरंत फुल स्टॉप लगाया, तुरंत फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप माना बिंदु लगा दो, है ना, और फिर अशरीरी आत्मा बन के और अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ और अपने जितने पापक्रम भस्म करते जाएंगे, पापक्रम उसकी याद से पापक्रम भस्म होंगे, तो क्या है गारंटी, क्या है भविष्य की गारंटी, क्या है कि हम जरूर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता और फिर बीज रूप बन के बीज रूप बाप के साथ वापस घर जाएंगे, वाया सूक्ष्म वतन, फिर कहां आएंगे, सत्युग में बाबा के साथ वापस, सर आज सत्युग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, श्री कृष्ण के साथ आएंगे, गारंटी के नहीं है, क्योंकि 90% विचार कहां से आते हैं, पास्ट से आते हैं, भूतकाल से आ गए आते हैं, या भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चिंता से, या तो पास्ट का चिंतन या भविष्य की चिंता, है ना, इसी से आते हैं। सिर्फ 10% विचार कहां से आते हैं, वर्तमान से आते हैं, तो वर्तमान के 10% विचार, इसी को अशांति कहते हैं। अभी 30-35-40 विचार एक मिनट में आते हैं, क्योंकि इतना 90% इसमें कहां से आ रहे हैं, पास से या भविष्य से आ रहे हैं, तो वर्तमान में कितने से 10% माना 40 में से 36 विचार कहां से आ रहे हैं, पास से, और वर्तमान से कितने आ रहे हैं, 4, तो 36 खत्म हो जाए तो कितने बचे, 4, तो 4 को शांति कहते हैं, 40 को अशांति कहते हैं। वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट, इसको शांति। तो जितना हमें अभ्यास करेंगे देही मानी स्थिति में रहने का, चलते फिरते, देही मानी स्थिति का मतलब ही है क्या है, मुरली का मनन चिंतन मंथन से मरण करते, मनन मन ही मन में रिवाइज करते रहो, चिंतन मना बाबा ने कहा ना, आज क्या है ये, क्या है मन, संगम है किसका, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम है, और यहां तुम बच्चे क्या करने आए हो, कौड़ी से हीरे जैसा, तो मुझे क्या अंदर से चिंतन माना, बाबा मुझे तो हीरा बनना है, बाबा मुझे तो हीरा बनना है, किस पे कैसे बनेंगे, इस संगम पे रहेंगे तो हीरा बनेंगे ना, संगम माना ज्ञान सागर बाप में समाये रहेंगे और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा हीरा बन गए हम भी हीरे बन जाएंगे, क्योंकि संगम युग कैसा युग है, सत्युग क्या है, गोल्डन एज है, ये कौन सी एज है, डायमंड एज है, ये हीरे समान बनने की होगा, वो सोने 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 की दुनिया है, नहीं तो बाबा ने कहा जहां ज्ञान सागर, जहां सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला, उसको क्या कहते हैं, डायमंड हार्बर कहते हैं, आज के मूल्य में था ना, तो पर डायमंड हार्बर तो उन्होंने नाम रखा, कि तो सचमुच में जो ये युग है ये हीरे तुल्य बनने का युग है, तो अगर हम सचमुच में बाबा की याद में रह करके पावरफुल बनते हैं इस समय, पर बात निरंतरता की है, सदा की है। अच्छा आप मुझे बताइए, आप सांस सुबह शाम लेते हो कि सारे दिन लेते हो, कई भाई बहन क्या करते हैं, हम आधा घंटा सुबह याद करते हैं, आधा घंटा शाम को याद करते हैं, बाकी सारा दिन, जब पाप किए थे हमने तो आधा घंटा सुबह शाम किए थे क्या, आधा घंटा सुबह किए थे, आधा घंटा शाम, दिन में तो पाप किए नहीं, रात को तो पाप किए नहीं, हमने श्वासों श्वास पाप किए थे नहीं, लगन से किए थे कि ऊपर ऊपर से किए थे, योग हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं तो कैसे विक्रम विनाश होंगे, हो सकते हैं विक्रम विनाश, तो जब लगन से करेंगे तो पॉसिबल है ना, तो ये हमें अगर पांचों विकारों का जो आग है अंदर उसको भस्म करने क्या करना पड़ेगा, अपने उस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की फाइलें जितना देह हमारी स्थिति में टिकते जाएंगे, एबीसीडी को महसूस अंदर अंदर रिवाइज करते जाएंगे, मुरली का वरदान, मुरली का स्लोगन, आज का व्यक्ति इशारा, उसको बार बार, क्या था व्यक्ति इशारा आज का, क्या था? पवित्रता की शक्ति के द्वारा व्यक्ति का भी परिवर्तन और प्रकृति का भी परिवर्तन, व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाते हैं और प्रकृति भी परिवर्तन, इसको बोलते स्व परिवर्तन है ना। तो ये दोनों चीज, मतलब व्यक्ति में ना आत्मा का भी परिवर्तन कर सकते हैं और ये प्रकृति, प्रकृति में ना शरीर, इसका भी परिवर्तन। पहले मुझे अपना करना है कि आपका करना है? पहले मुझे अपना करना है, आपको अपना करना है। और जब हम इकट्ठे मिलकर के संगठन में करेंगे तो क्या होगा, सारे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। योग और योग भट्टी में क्या फर्क है बताओ? चलो आप भट्टी में आए हो ना, योग और योग भट्टी में क्या फर्क है, कौन बताएगा? टीचर बहनों में से बताओ। चलो योग में अकेले बैठ के करता हूं ना, तो एक कोला, एक लकड़ी का, एक लकड़ी जली, एक कोला जला, तो उससे सोना पिघल सकता है क्या? पिघल सकता है? नहीं पिघल सकता ना, क्योंकि तो 100 लकड़ी जले इकट्ठी, या 100 कोले इकट्ठे जलाएं, 1000 कोले इकट्ठे जलाएं तो क्या होगा, और इकट्ठे जलें 1000 कोले तो क्या होगा, भट्टी बनगी नहीं भट्टी है ना, इतनी आग लगेगी उसमें क्या होगा, लोहा भी पिघल जाए, सोना भी तो पिघल ही जाएगा, उसका मैल, उसकी अलॉय तो निकल ही जाएगी, खाद निकल जाएगी, और लोहा भी कैसे होता है, लोहा भी पिघल सकता है नहीं? शीशा, रेत भी पिघल सकती है, रेत पता है आपको, रेत में क्या होता है, रेत नहीं होती इसमें मरुस्थल में, जैसे जैसलमेर है, अगर रेत में भी, रेत भी क्या होता है, रेत में भी पिघल जाती है, शीशा बन जाती है ना, इतना इतनी ताकत है आग में ना। तो भट्टी माना जब हम संगठन में करते हैं, जैसे आप अभी 500 भाई बहने आए, और 500 भाई बहने एक ही संकल्प में टिके कि मैं अश्री आत्मा परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइन हूं, उस पावर हाउस से कंबाइन हूं, एक ही संकल्प में टिक जाओ और आधा घंटा टिक जाओ, क्या होगा? ये योग भट्टी ज्वाला, इस ज्वाला में अपने अंदर इतनी इतनी करंट आएगी, इतनी शक्ति आएगी, जो मेरे पुराने संस्कार थे ना, जो सालों से खत्म नहीं हो रहे थे, वो खत्म होने शुरू हो जाए। और निरंतर करो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि चिता निरंतर होती है, अग्नि निरंतर होती है, आधा घंटा पौना घंटा नहीं होती है ना। आशिक माशुक का प्यार कैसा होता है, आधा घंटा सुबह शाम करते हैं, एक दूसरे को आधा घंटा सुबह शाम याद करते हैं, लाल लाइट जला के गीत बजा के करते हैं, जो लव लेटर कितने कैसे पढ़ते हैं, लव लेटर कहां रखते हैं, छुपा के रखते हैं ना, और पढ़ते कभी हैं, दिखा के पढ़ते हैं, ऐसे छुपा के फिर यूं पढ़ते हैं, सामने कोई आए तो तुरंत छुपा लेते हैं, और फिर वही सोचते रहते हैं जो उसने लिखा है ना एक लाइन, फिर तो मौका रहता है, बुद्धि में रहता है अगली लाइन क्या देखें, फिर मौका लगा कोई गया, फिर यूं किया, छुपाया, पढ़ा, मुस्कुराया, फिर छुपा लिया है ना। तो 24 घंटा उनको याद रहती है, नहीं रहती 24 घंटा याद। तो योग भट्टी माने एक तो है जो साकारी भट्टी, चलो कई बार नहीं कर सकते हैं, हमारे अलग अलग काम धंधे हैं, प्रोफेशन है, जिम्मेवारियां हैं, कई बार निकल सकते, कई बार एक आकारी भट्टी, अभी मैंने वो प्रैक्टिस शुरू की गुस्से में से, एक होती साकारी भट्टी, हम इकट्ठे बैठ गए है ना, आकारी भट्टी, आकारी भट्टी कैसे, आकारी भट्टी क्या होती है, जैसे अभी 14 लाख ब्राह्मण है, लगभग ब्राह्मण परिवार में 14 लाख ब्राह्मण है, जब भी आप योग करने बैठो, चाहे अकेले बैठो, हमारे अपने घर में बैठो, चाहे सेंटर में बैठो, बाबा कमरे में बैठो, तो बाबा के साथ जब जुड़ जाओ, सूक्ष्म वेतन में चले जाओ, ठीक है, सूक्ष्म वेतन गए, और मैं उस पर बात करूंगा अभी कैसे सूक्ष्म वेतन में जाना, क्योंकि अगर हमें अचलोडल अवस्था बनानी है, चारों तरफ की हलचल भी बहुत जोर से आने वाली है, अचलोडल अवस्था बनानी है, तो मुझे क्या अभ्यास होना चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी बनने का, परम धाम निवासी बनने का, एक सेकंड में यह साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल लानी चाहिए, जैसे कोई होता ना यहां से, मान लो अभी यहां आग लग गई या कुछ हो गया, तो मैं उड़ के दुनिया में, मानो चारों तरफ आग ही आग हो गई, एटम बम फट गया है ना, तो क्या हुआ, सारे लोग मर जाएंगे, मैं एक सेकंड, कितनी देर लगी, एटम बम मान लो फटा यहां पर, यहां से जो 100 मीटर दूर फटा, तो मेरे कितनी देर में यहां से उड़ना होगा, कितनी देर में उड़ना होगा, अगर मैं एक सेकंड से ज्यादा लग गया तो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो विक्रम विनाश तो होंगे नहीं, आत्मा बिना विक्रम विनाश के मुड़ जाए वो जाएगी कि तो अगर मैं एक सेकंड से भी कम समय में यहां से उड़ जाऊं सूक्ष्मतन में पहुंच जाऊं तो क्या होगा, या परम धाम में पहुंच जाऊं तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे तक आग नहीं पहुंचेगी। ये एक्चुअली ये इस समय की स्थिति है, ये इतनी वंडरफुल स्थिति है, नेचर भी इसको अटैक नहीं कर सकती है। ये जो आपका हवा मंडल बनता है ना, याद से मान लीजिए आपका हवा मंडल है 4 फुट इधर 4 फुट इधर 4 फुट इधर 4 फुट इधर, इसको 8 फुट भी बना सकते हो, 8 फुट इधर 8 फुट इधर 8 फुट इधर 8 फुट ऊपर 8 फुट नीचे, या इसको आप 16 फुट भी बना सकते हो, 32 फुट भी 32 फुट इधर 32 फुट इधर 32 फुट इधर 32 फुट इधर। आपका सेंटर कितना बड़ा है, 64 फुट भी बना सकते, 128 फुट इधर 128 फुट इधर 128 फुट 128 फुट। इसमें कोई भी जो आएगा ना वो बच जाएगा। नेचर की फोर्स भी, भूकंप भी आएगा, भूकंप भी टकरा के वहां से उधर पटल तरफ चला जाएगा, आसपास सब जल जाएगा, इतना एरिया बच जाएगा। जो अंत में जो विनाश होगा ना, जब विनाश हो रहा होगा, चाहे एटम बम फट रहे होंगे, चाहे सिविल वार होगी, सिविल वार भी तो होगी ना, अभी तो वो सीन बन गए, भारत में सीन बना नहीं बना, सिविल वार का तैयार है ना। अभी कुछ दिन पहले तो कहते थे मुश्किल है, अभी तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, पर अभी तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, सिविल वार का सीन तैयार है, बाबा ने बताया हुआ। और विश्व में कौन सी तैयार है, वर्ल्ड वार का सीन तैयार हो गया, लगभग तैयार है कि नहीं, आज रात भी वर्ल्ड वार हो सकती है ना, नहीं हो सकती है। और भारत में आज रात में भी सिविल वार हो सकती है, सिर्फ चिंगारी फटने की देर है ना, थोड़ा सा भी बात हो जाए तो शुरू हो जाएगी ना। तैयार बैठे ना दोनों ग्रुप्स, पहले हिंदू लोग शांत थे, अभी वो भी कहते हम भी लड़ेंगे, सब तैयार है ना अभी तो ना। पहले दो पार्टी में से एक पार्टी शांत बैठी थी, अभी दूसरी पार्टी कहते हम भी तैयार है ना, तो दोनों तैयार हो गए। तो अभी जो है दोनों सीन बिल्कुल तैयार है, किसी समय भी हो सकता है, अंत समय कभी भी आ सकता है। तो ऐसी चारों तरफ हलचल में हमारी अचल अटल अवस्था कैसे बनेगी। तो जैसे मैंने बताया, एक तो विनाश की आग के लिए बचने के लिए क्या चाहिए, मैं फिर इसको सिस्टमेटिक तरीके से, पहले एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक विधि से चलते हैं। तो पहली कौन सी चाहिए हमें, पहले चाहिए ये वाली, कौन सी वाली, कौन सी, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज रख करके व्यवहार करना, संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, स्वप्न में भी आओ, सोने के पहले भी इसको इमर्ज करके सो जाओ, ऐसे नहीं सो जाओ। कौन से स्टेज में सोना है, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी, इसलिए मेडिटेशन करके बाबा की याद में टिक करके और सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में चले जाओ। ये जो आपका बेड है ना वो गैरेज है ना, गैरेज, गाड़ी कहां पार्क करते हैं, फिर गैरेज में सोते भी है क्या। हमारा बेडरूम कौन सा है, सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है, बाप दादा की गोद, तो वहां जाके सो जाओ। तो वो स्थिति में जाकर सोना तो सेफ है ना। रात में अगर भूकंप भी आ गया, कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम है क्या, विनाश नहीं होगा, क्योंकि आप वहां हो, है ना, बाबा की गोद में हो, बाबा सर्व संबंधों से आपके साथ है, आप ज्ञान के सागर में समाये हो, पवित्रता के सागर में समाये हो, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर में समाये। शरीर यहां रखा हुआ है, आप मन बुद्धि से वहां हो, तो इस शरीर की भी प्रोटेक्शन होगी, राइट, ये गारंटी है। अकाले मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते, 21 जन्म अकाले मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। कौन सा, ये कौन सा जन्म है हमारा, पहला जन्म। सच्चा ब्राह्मण कभी भी अकाले मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता, ये गारंटी है। सच्चा ब्राह्मण माना, सच्चा ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण, ब्रह्मा माना क्या, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि, बेहद, बेहद की मां, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि और मन वाले, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि, मान जिसके अंदर बेहद की बुद्धि कौन सी है, दिव्य बुद्धि, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जिसकी बुद्धि में मुरली भरी है, जिसकी बुद्धि में बाबा और मुरली भरी हुई है, और उस बुद्धि से, उस बाबा और बाबा की याद और मुरली से, बाबा के ज्ञान से मनमना भाव करने वाले, हर मन के हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में, हर स्मृति में, किसको भरने वाले, बाबा को, और बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको भरने वाले, उसे कहते हैं मनमना भाव। मनमना भाव से मध्याजी, मध्याजी माना, मध्याजी भाव का मतलब क्या है, मध्याजी माना फरिश्ता, सो देवता ना। मध्याजी वैसे दो चीजों के लिए शब्द यूज हुआ, एक तो जो मध्य से संस्कार आए ना हमारे, मध्य से संस्कार कौन से आए, विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार आए ना हमारे अंदर, सत्युग में तो नहीं थे, त्रेता में तो थे नहीं, द्वापर से आए, मध्य में आए ना, एक तो उनपे जीत पाना, इसलिए मध्याजी शब्द आया। दूसरा मध्याजी शब्द किस लिए आया, मध्याजी शब्द इसलिए आया, इसलिए भी आया कि मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, तो मेल फीमेल का भान किसे परे, उसे उसे क्या कहते हैं, फरिश्ता। फरिश्ता क्या होता है, ना मेल होता है कि फीमेल होता है, ना मेल ना फीमेल, ना न्यारा प्यारा, पुरानी दुनिया से न्यारा, बाप की गोद का प्यारा, राइट, इस फर्श से, उस फर्श पे उसके बुद्धि रूपी प्यार फर्श पे नहीं है, अर्श पे है, अर्श में ना आसमान से भी परे, बाप दादा की गोद में है, उसकी बुद्धि कहां है, बाबा की गोद में, अर्श माना बाबा की गोद में, बुद्धि बाबा की गोद में, बाबा बाप दादा से जुड़ी हुई है, वह है फरिश्ता, राइट। तो ब्राह्मण माना जिसकी जिसकी 100% बेहद की बुद्धि है, और वो इसी इसी कार्य में लगा रहता है, उसका काम क्या है, होमवर्क क्या है, सारा दिन मनमना भाव, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन घूटता रहता है मुरली का, ठीक है, ये मुरली ज्ञान है सत्य की, इसमें शिक्षा श्रीमत भी है, शिक्षा भी है, सावधानी भी है, फरमान भी है, इसी में चारों सब्जेक्ट है, मुरली में चारों सब्जेक्ट है कि नहीं है, चारों सब्जेक्ट मुरली में ही है, तो सारा दिन घूटता रहता है, ठीक है, तो वो जो है क्या है, फरिश्ता। और मध्याजी माना फरिश्ता, मतलब मनमना भाव से फरिश्ता बना, और फरिश्ता सो देवता, देवता माना विष्णु, विष्णु माना जिसकी प्रवृत्ति में, एक तो प्रवृत्ति हो गई हमारी मेल फीमेल की प्रवृत्ति कौन सी हो गई, लक्ष्मी नारायण, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, वो तो हो गई एक माइंड, तो इंडिविजुअल में दे बैठा हूं तो फिर मेरी प्रवृत्ति क्या है, मन बुद्धि संस्कार, मेरी सूक्ष्म प्रवृत्ति कौन सी, हरेक के पास बुद्धि मन संस्कार तीनों को मुझे क्या करना है, विष का एक अणु भी ना रहे, विष्णु माना विष का एक अणु भी, किसी भी विकार का अंश भी ना रहे, वो विष्णु स्थिति है, राइट। इतना पुरुषार्थ करें हम, इतना पुरुषार्थ करें हमारे विष के अणु भी ना रहे, तो ऐसा मुझे, तो ये जो है हमें स्थिति अपनानी है, पांचों विकारों की आग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को सदा इमर्ज रखना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते समय भी, और जो पांच तत्वों की आग, जो विनाश की आग आएगी, इससे क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्भयता की शक्ति चाहिए। निर्भयता कब आएगी, उसके पहले सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर निर्भयता आएगी। सत्यता पवित्रता क्या चीज है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के व्यवहार, दूसरे के भी, दूसरा माना चाहे आपके घर में आपके माता पिता है, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, उसके भी कौन से स्वरूप को इमर्ज करो, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन सतो प्रधान स्वरूप को इमर्ज करो, और तब उनसे व्यवहार करो। बीच में ब्रह्मा बाबा को, बाप दादा को रख दो, कैसे इमर्ज होगा, बाप दादा को बीच में, बाप दादा के थ्रू देखो, शिव बाबा से जुड़ जाओ और ब्रह्मा बाबा को बीच में रख दो, फिर उसके थ्रू, ब्रह्मा बाबा ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ब्रह्मा फरिश्ता है ना, उसके थ्रू देखोगे तो क्या होगा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं आएगा, राइट, आवेग नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा, आसक्ति नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, और आहत नहीं होंगे किसी बात से, बच्चे ने कुछ बोल दिया आपको, आपको इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक है, फीलिंग नहीं आएगी, आप इसकी बहुत क्लोज दोस्त ने, क्लोज संबंधी ने कुछ बोल दिया, आपको फीलिंग नहीं आएगी, रोना नहीं आएगा, रोना है तो फेल हो गए, है नहीं होगा, नहीं होगा, इसी तरह से आपको अहम वहम नहीं आएगा, क्योंकि बीच में बाबा को कंप्यूटर को रख दिया, बाबा ने कहा ना अभी 31 तारीख की मुरली में था ना, सबसे एक्यूरेट कंप्यूटर कौन सा है, ब्रह्मा बाबा के जीवन, बीच में रख दो उसको, उसके थ्रू देखो, किसी को भी देखो तो क्या होगा, किसी से मिलो बीच में उसको रख दो, डायरेक्ट मत देखो, डायरेक्ट देखो तो फंस जाओगे, फिर अचड़ नहीं दे सकते, ठीक है, फिर तो आप भी हलचल में आ जाओगे, कोई भी परिस्थिति आई हलचल, बीच में उसको रख दो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें, तो तीसरी आग कौन सी, देहाभिमान की आग, देहाभिमान के संबंध संपर्क और पदार्थों के ममता की आग, इसके लिए क्या करना है, ये तो सब जाने वाली चीजें हैं, देहाभिमान भी जाएगा, संबंध संपर्क भी जाएंगे, पदार्थ भी जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो पता है हमको। बाबा ही मेरा संसार है, ये बना लेंगे ना, बाबा को सब कुछ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आग से हमारे अंदर जो आग खत्म हो जाएगी। अभी से प्रैक्टिस करनी है, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप अभ्यास में रहना, निर्भयता माना। दो दो आंखें हैं हमारे पास, कौन सी आंख है बताओ, कौन सी आंख है, कौन सी आंख, दाई आंख बाई आंख, नहीं, आत्मा के पास दो आंखें हैं, बुद्धि और मन। बुद्धि रूपी आंख परमधाम में लगी रहे बाबा के पास, निरंतर बाबा को देखती रहे, बाबा से जुड़ी रहे, बाबा को याद करती रहे सर्व संबंधों से। और मन रूपी आंख लक्ष्य पे लगे रहे, अपने स्वर्ग में, स्वर्ग में अपने लक्ष्य, लक्ष्य हमारा क्या है, श्री कृष्ण जैसा बच्चा बनना है, श्री कृष्ण श्री नारायण जैसा बनना है, श्री लक्ष्मी जैसा बनना है, वहां स्वर्ग में हमारी मन लगा रहे। तो ये जो हमारी दो आंख जो वहां लगी हुई है, तो मैं तो यहां हूं ही नहीं, बुद्धि वहां लगी है, मन वहां लगा है, तो डर लगेगा, डर लगेगा नहीं, किसी बात का डर लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और देहाभिमान की, मैंने देहाभिमान और देह के संबंध संपर्क की बात बताई, उसलिए बाबा ही मेरा संसार है। और पश्चाताप की आग जो होगी वो ब्राह्मणों में ज्यादा लगी, क्योंकि इसलिए क्या करो, सर्व प्राप्तियां बाबा से महसूस कर, अनुभव कर, अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। अब इसका मैं सार आपको बताता हूं, सार शेयर करता हूं आपसे, क्या करना है अगर हमें सचमुच में अचल अवस्था चाहिए। तो इसका जो मंत्र है ना वो है मनमना भव, यंत्र है क्या, क्लीन और क्लियर बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, और मंत्र मनमना भव, और उसका यंत्र मशीन कौन सी है उसकी, बुद्धि, क्लीन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, और उसका मेन स्विच कौन सा है, मेन स्विच है दिल, सच्ची दिल साफ दिल। तो सच्ची दिल साफ दिल किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, दिल को अपना सच्चा साफ बनाना है। आपने देखा होगा ना शूटिंग रेंज होती है ना, जहां शूटिंग रेंज समझते हैं, जाने पिस्टल का अभ्यास करते हैं, तीर कमान मारने का अभ्यास करते हैं, तो सामने एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें एक बिंदु होता है, आसपास गोले बने होते हैं, पहला गोला दूसरा गोला, पहले गोले में तीर मारो तो क्या लगे, 10x10 नंबर मिलते हैं, 10 में से 10 नंबर, दूसरे में मारो तो 9x10 है ना, तीसरे में मारो तो 8x10, चौथे में मारो तो कम होते जाएंगे, और उसके सारे गोलों के बाहर मार दो तो 0 है ना। तो वो जो बीच वाला गोला है ना वो हमारी दिल है, बीच में बिंदु है ना वो आत्मा है और वो दिल है, यहां पर, यहां से 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, क्योंकि वो सेल्स ऐसे हैं जहां पर आत्मा है और आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां। तो दिल जो है ये चीज ऐसी जगह जिसे बिजली है ना, ये लाइट देख रहे हैं मेरे सामने, इसके आसपास सबसे ज्यादा लाइट है, जितना उससे दूर होंगे लाइट कम होती जा रही है, यहां से 50 मीटर दूर चले जाओ तो लाइट एकदम ना के बराबर होगी। तो ये जो वहां पर सबसे, उसी को दिल कहते हैं जहां पर आत्मा की सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो आत्मा का जो दिल है, एक्चुअली बुद्धि का ही एक आस्पेक्ट है, बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, पहला दिल है, दूसरा विवेक है जिसे विजडम भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरा निर्णय शक्ति है, चौथा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड। तो पहली जो चीज है वो दिल है, दिल अगर सच्ची और साफ है तो क्या होगा, सच्ची साफ का मतलब क्या है, जिस दिल में बाबा के अलावा कोई नहीं हो, जिस दिल में क्या कौन ना हो, एक बाबा के मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जैसे मीरा का था ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, सचमुच में कोई दूसरा है हमारा, सोचो अभी कोरोना कोविड में देखा ना हमने, कोई है हमारा, आपको अगर कोविड हो जाए तो बेटा साथ आएगा, बेटी साथ आएगी, पति साथ आएगा, पत्नी साथ आएगी, आएगी पास में रहेगी, रहेगा कोई साथ में, बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उसने कहा कोई बात नहीं माँ तेरे को हो गया ना, मैं अब तेरे पास ही रहूंगा, मैं भी मर जाऊं कोई बात नहीं, मैं तेरे पास ही रहूंगा, ऐसे कोई है, किसी ने किया ऐसा काम, किया, अच्छा कोई करने की हिम्मत भी करे तो डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे नहीं? अभी तो कोविड थोड़ी सी बीमारी आई है, एक छोटा सा रिहर्सल वो थी ना, ट्रेलर आया फिल्म का, फिल्म तो पूरी बाकी है अभी ना, कोविड क्या था, फिल्म का ट्रेलर था, आने वाली फिल्म का ट्रेलर है ना, अभी फिल्म आएगी तो क्या होगा, पूरी फिल्म बाकी है ना, तो उस समय क्या होगा, जैसे कोविड में निकलना बाहर मना था, बाहर देखना भी मना था, और जाओ तो शक्ल छिपा के जाओ, पता भी लगे कौन जा रहा है ना। और मुंह पे भी हम लोग तो डबल डबल मास्क लगाते थे, और पूरा ऊपर भी कवर और नीचे भी कवर, पूरा नीचे तक कवर है ना, जूते भी हमारे उसमें होते थे, नीचे इलेक्ट्रिक कवर होते थे, पसीना पसीना अंदर होते रहते थे कपड़े, हमें वॉशरूम जाना भी अलाउड नहीं था है ना, क्योंकि एक 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 जो आते ना वो पीपी किट 500 रुपए की आती है, एक बार निकालते तो खत्म, फिर दूसरी पहननी पड़ेगी है ना, ऐसी हालत थी ना हम डॉक्टरों की, ऐसी हालत थी उसमें, बाथरूम भी अगर 8 घंटा ड्यूटी 8 घंटे ऐसे ही रहो है ना, तो ऐसी हालत थी हमारी ना। और पसीना, क्योंकि वो कपड़े तो कपड़े का तो नहीं होता है पीपी किट, वो तो प्लास्टिक की होती है, तो उसमें तो इतना पसीना आता है गर्मी का मौसम, ऊपर से इतना पसीना, इससे बीच में पानी पीना पड़ता था, वो बीच में नारियल पानी तो कौन पिलाएगा, वो नहीं होता, ORS पीते रहते थे बीच बीच में ना, नहीं तो पानी कम से कम 1 लीटर तो ऐसे निकल जाता था 8 घंटे में, कपड़ों के अंदर ही पानी जो निकलता रहता है ऐसे, इतना पसीना आता था। तो ऐसी हालत थी आदमी की ना, सांस भी दो दो मास्क लगाते थे ताकि वो सांस भी कितना आता होगा सोचो जनाब, डबल मास्क नाक पे लगा दो तो कैसी हालत होगी, तो ऐसी हालत थी। तो उसने दिखा दिया कि हमारा कोई है क्या, तो अब ये और हमने सब दिया मनुभव, सबके सब अनुभव की अथॉरिटी है दुनिया के संबंधों की। अच्छा बाबा की याद क्यों नहीं आती है, बाबा दिल याद उसकी आती है जो हमारे दिल में बैठा होता है। अभी हमारे दिल में कौन कौन बैठा हुआ है, मनुष्यों के दिल में कौन कौन बैठा हुआ है, सबसे पहले तो अपनी देह बैठी हुई है, बैठी कि नहीं बैठी, कुछ भी देह में हो जाए किसके क्या चलता रहता है, बुद्धि वहीं लगी रहती है ना, हार्ट की बीमारी हार्ट की आर्टरी बंद हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए तो सारा टाइम डायबिटीज ही बुद्धि में बैठी रहती है, नहीं बैठी रहती, सिर में दर्द हो माइग्रेन हो दिल में क्या है, दिल उसी की याद आएगी इस माइग्रेन की है ना। देह और देह के संबंध, देह भान देह अभिमान, मैं ये हूं और देह के संबंध संपर्क का भान, ये मेरा ये है मेरा ये है, देह के पदार्थों का भान कहां बैठा है, दिल में बैठा हुआ, और देवान के ये जो 5 विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी दिल में ही बैठे हुए हैं मनुष्यों के, और संस्कार हमारे मन में बैठे हुए हैं। तो अब क्या करना है, अब दिल में इन सबको निकालो पहले, तो इसलिए बाबा क्या कहता है, इस अपने को स्थूल देह देखे सब संबंध संपर्क देखे पदार्थ देवान के स्वभाव संस्कार को बुद्धि से त्याग, बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, मां में कम याद करो। तो बाबा को याद करने का तरीका क्या है, पहले दिल में से इसको निकालो, देहभान को निकालो, मैं आत्मा हूं, अपने आप से बात करो, चलते फिरते बात करो, मैं देह नहीं मैं चलाने वाली इसको आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और देह के संबंध संपर्क मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और पदार्थ क्या ये 7 गुण मेरी प्रॉपर्टी है, 6 गुण और 8 शक्तियां ये मेरा ज्ञान गुण और शक्तियां, ज्ञान सत्य की समझ और ये 5 गुण पवित्रता शांति प्रेम सुख और आनंद, ये 8 5 गुण है और 8 शक्तियां ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पदार्थ है मुझे आत्मा के, राइट। ऐसे अपने आप से बात करो, यही मुझे चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और देवान के स्वभाव, देवान का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है, ये 7 एनर्जी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियां, और संस्कार क्या है, संस्कार क्या है, अलर्ट एक्यूरेट, ये आत्मा का संस्कार है। तो ऐसे अपने आप से बात करते जाओ और फिर ये जो है, एक तो बाबा दिल से कहते दिल सच्ची दिल सर्व संबंध, माता का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु का संबंध, सखा साजन सर्जन बच्चा, मुख्य 9 संबंध के तो अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहिए, एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ तो क्या होगा, दिल सच्ची है साफ हो जाएगी, दिल सच्ची हो जाएगी, और साफ माना जिस दिल में श्रीमत के अलावा मनमत परमत का जरा भी अंश ना हो, अर्थात मुरली के अलावा कुछ और इधर उधर की बातें बुद्धि में दिल में ना हो, जिसकी ऐसी दिल सच्ची और साफ है ना, टाइम नहीं है तो मैं आपको बताता शेयर करता, बाबा जो है मां के रूप में क्या करता, शिव बाबा ब्रह्मा की तरह मां की पालना और प्यार देता है, और जन्म देते ही दिव्य नेत्र बुद्धि में दिव्य दृष्टि दे देता है वरदान में, जिससे अपने को भी आत्मा देखो दूसरों को भी आत्मा देखो। ये प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, दिव्य बुद्धि, हमारी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट जो बाबा देता है, जन्म देते ही देता है गिफ्ट के रूप में, वो लिफ्ट का काम करती है, लिफ्ट बन जाती है। और उसमें दिव्य बुद्धि लिफ्ट का काम करती है मुझ आत्मा को, और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि उसका इंजन है और संस्कार इसकी ड्रेस है। ये जो हमारे चार नियम और चार मर्यादाएं हैं ना, ये संस्कार डालना, ये संस्कार बना देना है, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये चार हमारे क्या है, मर्यादाएं। और चार नियम कौन से हैं हमारे, कौन सा, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, बाबा ने आज क्या कहा, दुनिया वालों ने कहा कि वो नहीं, बाबा ने क्या कहा, अर्थात बाबा की कही हुई बातों का सारा दिन मनन, माना मनी मन में रिवाइज करो, चिंतन माना मुझे बाबा ऐसा बनना है, मंथन माना कैसे बनना है, बुद्धि में, बुद्धि अब साथ में बीच में आ गई, बुद्धि और मन का चल रहा है, जैसे क्या करते हैं, मंथन करते हैं ना, मक्खन निकालते हैं दही में से, कैसे निकालते हैं, मथानी से ऐसे बलोते हैं ना, तो बुद्धि और मन क्या आपस में ऐसे मथानी चल रही है, बाबा ने इसके लिए कहा था, उस दिन ऐसा भी कहा था, उस दिन ऐसा, सबको मिला लो, बाबा भी साथ आ जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन कौन सा, कि इसको कैसे जीवन में लाया जाए, मुझे बनना तो है, तो मक्खन निकला। अब सिमरण माना सिमर सिमर सुख पाओ, मक्खन खाते रहो, काम करते रहो, मक्खन खाते रहो, माना उस जो बाबा ने मक्खन निकाल के दिया ना, उसको कार्य में, कार्य करते समय बुद्धि में लगा, यूज करो उसको, व्यवहार में लाओ, तो सिमर सिमर सुख पाओ माना हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा देखना बदलेगा, हमारा पढ़ना बदलेगा, सुनना बदलेगा, बोल बदलेंगे, खान पान बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, है ना, हमारा चेहरा बदलेगा, हमारा चलन माना कर्म बदलेंगे, चलना फिरना बदलेगा। तो इस सिमर, तो सिमरने से क्या, सिमरने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, और उसको फिर मगन हो जाओ। जैसे बच्चे मगन मक्खन खाते क्या करते हैं, कोई ध्यान रहता है क्या, मक्खन खाने को आपको छुट्टी नहीं है, बड़े हो गए ना अभी, तो बचपन में मक्खन खाएगा तो क्या होता है, मक्खन खाने में इस उंगली साथ से भी खाएगा, उस साथ से भी खाएगा, सारा यूं लगा लेगा, और बस वो खाता ही रहेगा। उसको कोई ध्यान है आसपास क्या हो रहा है, कोई ध्यान नहीं, मक्खन खाने में इतना बिजी हो जाएगा बच्चा, जैसे कृष्ण को दिखाते ना मक्खन खाने में कितना बिजी, तो मक्खन खाने में बिजी हो जाओ, मगन हो जाओ, इसी को याद कहते हैं बाबा, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज माने सच्चे दिल से महसूस करो कि मैं कौन हूं, मैं तो देह तो हूं ही नहीं, विनाश में क्या क्या भस्म होगी, देह भस्म होगी ना, मैं तो आत्मा, आत्मा भस्म हो सकती है, कोई मुझे मार सकता है क्या, मेरा बाबा है उसे कोई मार सकता है क्या, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, वो सातों आठ मतलब नौ संबंध की अनुभूति उससे करो, तो मां के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिली, उसे सूक्ष्म वतन में मन को मैंने एकदम क्लीन बना लिया, और बुद्धि एकदम बढ़िया इंजन बन गई, और संस्कार कैसे बन गए, ये चार मर्यादाएं और चार नियम, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन चलता रहता है, मंथन सिमरण और उसमें लगन में मगन रहते हैं, तो ज्वालामुखी शक्तिशाली योगिनी जागृत होती है, सोने के पहले वेंटिलेशन, पोता मिल देना बाबा को लिख के, बाबा आज मेरे से गलती हो गई, बाबा आपने तो ये कहा था मैंने गलती कर दी, बाबा ऐसा हुआ ऐसा ऐसा हुआ, तो जितना हम ये करते जाएंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म वतन में, ये सूक्ष्म वतन मेरा सूक्ष्म शरीर क्या तैयार हो गया ना, अब ये बुद्धि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट इस सूक्ष्म शरीर के साथ कहां पहुंच जाएगी, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुंचा देगी, वहां पे बाप के साथ का संबंध अनुभव करो, बाप का संबंध क्या है, तीसरा नेत्र, बाबा क्या कहता है, सत्य को परखने की शक्ति दे देता है, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्री बना देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, त्रिकालदर्शी का मतलब सुदर्शन चक्रधारी, बाबा की गोद में सुदर्शन को घुमाओ, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, अपने अंदर महसूस करो परमधाम का स्वरूप, अपने सर्वगुण संपन्न देखो, 36 गुण चेक करो, हर गुण में 100% बनाओ, 16 कला माना 100%, संपूर्ण निर्विकारी माना, किसी भी विकार का अंश नहीं रहे, अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम, हर मर्यादा मेरे अंदर आ गई, अहिंसा परमोधर्म हो गया, देखो अपने आप को, फिर मध्य पूज्य स्वरूप, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी स्वरूप, संगमे की ब्राह्मण स्वरूप, बाप दादा की गोद में सूक्ष्म वतन में बैठा हूं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, राजयोग सिखा रहा है, रचता रचना के आदि मदन का ज्ञान समझा रहा है, सिखा करके मुझे फरिश्ता से देवता बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहा है, फिर सुखधाम में लेके आ रहा है, तो ऐसे अपने आप से सतगुरु के रूप में क्या करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान, मतलब तीनों लोकों में अभी मेरे विक्रम विनाश नहीं हुए, फिर भी बाबा ने सूक्ष्म वतन में जाने की परमिशन दे दी, बच्चे जब चाहे सूक्ष्म वतन में आ जाओ, जब चाहे परमधाम में आ जाओ, और परमधाम से कभी कभी मेरे पास बाबा कहते अपने महल में भी चले जाओ, है ना, कभी कभी, हम बार बार नहीं। जितनी लगन लगाओगे, जितने विक्रम विनाश करोगे, उतनी बार महल में जाने की इच्छा हो परमिशन मिलेगी। ऐसे नहीं पहली बार नहीं जा सकते, जब आधे विक्रम विनाश कर लोगे तो क्या हो जाएगा, महल में जाने की परमिशन मिल जाती है। अपने महल तक जाने की परमिशन, अपने महल को देख के आने की परमिशन, अपनी स्थिति को देख के आने की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। जब 32 जन्मों के विक्रम विनाश कर लो तो, है ना, अभी 33 जन्म है ना, तो 32 तो कम से कम करो, तब आपको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल आ जाती है करने, क्यों, क्यों सतगुरु के रूप में ये वरदान मिल जाता है। साकारी आकारी बंधु के रूप में सारा बोझ बाप को दे दो, सखा के रूप में अपने मन की जो भी टेंशन हो बाबा को लिख दो, साधन के रूप में दैवी गुणों से सजा देता है बाबा, 36 दैवी गुणों से। सज्जन के रूप में जो छोटी छोटी बीमारियां हैं अंदर सूक्ष्म में, मन की, बुद्धि की, पुराने संस्कारों की, उनको खत्म करता रहता है। और फिर बाबा हमारा बच्चा बन जाता है, बच्चा माना अब बाबा को अपना तन मन धन देके हल्के हो जाओ, वारिस बना दो, बाबा ये सब आपका है, तो बाबा बच्चे के रूप में फिर सेवा करता है। ऐसे 9 संबंधों के मुख्य मतलब अथॉरिटी बन जाओ, तो बाबा जब मेरे सर्व संबंधी है और हर समय है, हर जगह है और हर कार्य में बाबा आपके साथ है, तो हम अचल अडोल रहने लगते हैं, और जब चाहे सूक्ष्म में उड़ जाते हैं, नहीं होता है। तो ऐसे जब दिल हमारी सच्ची साफ होगी तभी होगा, तो हमारी बुद्धि कैसी हो गई, बुद्धि दिव्य बन गई, माना अभी प्रकृतिक शक्ति बन गई, निर्णय शक्ति एकदम एक्यूरेट हो गई, और विस्तार को सार में लाने शक्ति आ गई, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेटा, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच गए, वहां से भी मन बुद्धि को समेटा, अशरीर बन के परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइन हो गए, विक्रम विनाश होने शुरू हुए, ऐसे केमिकल रिलीज होने शुरू होते हैं हमारे शरीर में, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटने खराब है, कमर खराब है, माइग्रेन है, कुछ भी हो रखा है चाहे आपको, दमा है, सांस नहीं आता है, वो ऐसे केमिकल के आपको फील ही नहीं होते, बीमारी जैसे खत्म ही होगी। जैसे यहां पर हार्ट के पेशेंट आते हैं ना हार्ट के प्रोग्राम में, उनके ब्लॉकेज ही खुल जाते हैं अभ्यास करते करते, ये वाला अभ्यास करने से। अशरीर बन के परमधाम गर्भ में सूक्ष्म वतन में गए, वहां से परमधाम में गए, और वो उस अभ्यास करते करते उनके अंदर परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन होता है, शांति प्यार खुशी के सागर में समाये रहते हैं, तो सारे ब्लॉक खुल जाते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, दमा ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, एसिडिटी ठीक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक, कमर ठीक, घुटने भी ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन भी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ में थोड़ा भोजन का परहेज, थोड़ा सा सैर वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, नींद प्रॉपर करते हैं, गंदी आवतें सब छूट जाती हैं, तो बीमारी खत्म। ऐसे में क्या होता है, जो कर्म भोग था ना, क्या सूली जैसा, वो कर्म योग के द्वारा चुप्त हो जाता है, सूली कांटा बन जाती है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो ये जो 8 शक्तियां आगे ना, चित्त शांत हो गया, एकाग्र आनंदमय हो गया, अब चिंतन कैसा चलेगा, जैसे कहते दिल में, दिल सच्चा आ गया ना, दिल में सत्य आ गया, और चित्त कैसा हो गया, शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि बन गई, जैसा चित्त वैसा चिंतन। अब मेरा दिल अगर सत्य है, दिल में बाबा है और मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, तो मेरा चित्त कैसा हो गया, शांत एकाग्र आनंदमय हो गया। अब चिंतन कैसा चलेगा, अब मेरा पिछले जन्म के पिछले कल्प के ब्राह्मण स्वरूप का, संपूर्ण सच्चे ब्राह्मण स्वरूप का चलेगा, फरिश्ता स्वरूप, बाबा मुरली में कहता फरिश्ता देवता, तो मेरे को मेरी फाइलें खुलेंगी, तब मेरी मुरली का चिंतन चलेगा सारा दिन, नहीं तो मुरली का चिंतन चलता नहीं। आप देखो सुबह मुरली सुनते हो, सारा दिन मुरली चलती है क्या बुद्धि में, और कोई बात याद आती रहती है, इसकी बात, उसकी बात, उसको मिलना है, उसको मिलना है, बाबा ने क्या कहा था वो याद नहीं आता है, क्यों, क्योंकि दिल में सत्य है, दिल में किसी के प्रति लगाव है, झुकाव है, प्रभाव टकराव है, किसी के प्रति थोड़ा सा भी अगर दिल में किसी को रखा हुआ ना कोई चीज को भी, तो दिल सच्ची साफ नहीं है, फिर विवेक हमारा कंफ्यूज होता है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और चित्त अशांत चंचल बेचैन हो जाता है, फिर कौन सी फाइलें खुलती हैं, इस समय की कलयुग की फाइलें खुलती हैं, कलयुग की फाइलें खुलेंगी, फिर मुरली का चिंतन नहीं चलता है, तो मन हमारा शांत एकाग्रमय हो जाता है, तो फिर मन हमारा कैसा मनमना भाव होने लगता है, सारा टाइम मुरली चलती रहती है, वरदान स्लोगन सारा दिन उसकी, जैसे ना मुरली बजती रहती है, मुरली बजती रहती है, तो जब मुरली बजती रहती है तो क्या होता है, उससे फिर मेरे मन में मेरा व्यवहार, जो बाबा का व्यवहार था ना, ब्रह्मा बाबा का व्यवहार था, शिव बाबा मस्तक में समा गया, नैनों में ब्रह्मा बाबा समा गया, तो ब्रह्मा बाबा का जो व्यवहार था, ब्रह्मा बाबा के जो गुण थे, फरिश्ता जैसा जीवन मेरा हो जाएगा। तो मेरा फरिश्ता बन गया तो क्या हो जाएगा, तेरे से अब पापक्रम भस्म होते जाते हैं, पापक्रम, क्योंकि पूरे विक्रम होते, पापक्रम होते नहीं और अच्छे कर्म होते चले जाते हैं, अच्छे कर्म होने शुरू हो गए तो मेरा क्या होगा, सारे विक्रम विनाश हो गए तो मेरी अचल अडल अवस्था रहे, कुछ भी होता रहे, क्योंकि मेरा विक्रम कहीं नहीं, किसी के साथ कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, तो जब जब भी कुछ होगा मैं सूक्ष्मतन में उड़ जाऊंगा, परमधाम में उड़ जाऊंगा, मेरा आभा मंडल इतना बड़ा हो जाएगा, बल्कि आसपास मेरे जो होंगे वो भी, अभी जैसे सेंटर जो है ना, हमारे सेंटर जो बाबा के सेंटर है, ये सेंटर क्या बन जाएंगे, एसलम बन जाएंगे, बाबा ने रिट्रीट सेंटर जगह जगह बनवा दिया, अभी क्यों बनवाए, क्योंकि वहां आपके जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं अंत में आके वो आके वहां के रह सके, आके अंत में तपस्या कर सके, बाकी सब स्थान विनाश हो जाएंगे, किंतु बाबा के बच्चे फिर भी अंत में वहां रह के तपस्या कर पाएंगे, और कुछ जो परफेक्ट बच्चे होंगे ना वो मधुबन में आ जाएंगे, अंत समय में ये स्थिति होने वाली है, क्योंकि तब अंत समय में जब, क्योंकि बाबा ने कहा, आज की मुरली में भी कहा, रिजल्ट कब निकलेगी, रिजल्ट तब निकलेगा जब पहले लड़ाई के पहले रिजल्ट निकलेगी, है ना, जब चारों तरफ हाहाकार हो रहा होगा उसके बीच में रिजल्ट निकलेगी, और रिजल्ट निकलेगी और फिर उसके बाद उस हाहाकार के बीच में निकलेगी और फिर जय जयकार हो जाएगी, और जो बच्चे सच्चे बच्चे होंगे उनको उनका मन और बुद्धि कैसे हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, उनको सत्य के सीन सिंधी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो वो विनाश देख रहे दुनिया वाले हाय हाय करेंगे और बाबा के बच्चे क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये गया नहीं, वो कहेंगे हाँ मैं सत्युग में गया, वो लोग हाय मरा, और हम क्या बोलेंगे, हम सत्युग में गए, ठीक है, तो इस तरह से हमारी अचल अडोल अवस्था बन जाएगी, और हम हमें जरा भी किसी बात का ना गम होगा ना शक होगा, बाबा की गोद का अनुभव करते रहेंगे सूक्ष्म वतन में, और सुखधाम का अनुभव करते रहेंगे, सत्युग की सीन सिंधी देखते रहेंगे, तो ये तरीका है चारों तरफ की हलचल में अचल अडोल अवस्था को प्राप्त करने का। ओम शांति।